प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हमारे वक्ता आज के प्रवचन को आरम्भ करें, सुनते हैं ये मधुर गीत।
अनुग्रह, कृपा और शांति आपको हमारे जीवित उद्धारक मसीह यीशु एवं सर्वोच्च पिता परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती रहे। जी हाँ, हम सर्वोच्च परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह एक ऐसा अधिकार है जो कि हमको हमारे उद्धारक मसीह यीशु की ओर से प्रदान किया गया है। मसीह यीशु पर विश्वास करके उनको अपना उद्धारक बनाकर हमने उनसे यह अधिकार प्राप्त किया है और अब इसके साथ हमको अनेक अमूल्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं। अधिक सुविधा है उनका जीवंत अकाट्य तथा अत्यंत प्रभावशाली वचन और उसका संदेश हम तक निशुल्क लाया जा रहा है। अब आवश्यक यह है कि हम इसे मन के शुद्ध उदार एवं उपयुक्त भाव में स्वीकार करें तथा परमेश्वर का अनंत उद्देश्य इसके द्वारा पूर्ण करें। यह इस प्रार्थना के द्वारा संभव होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी अनंत स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने हृदय के गहनतम आभार की भेंट लेकर हम आपके चरणों में उपस्थित हैं। आपने हम अयोग्य प्राणियों पर कृपा दृष्टि की और अपना जीवंत वचन हमारे लिए आरक्षित कर रखा है, जो आपका अपार अनुग्रह है। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपका दिया हुआ यह संदेश हमारे जीवन पर इच्छित प्रभाव छोड़े और हम इसके द्वारा आपके सुयोग्य सेवक प्रमाणित हों। प्रभु, अब हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस वचन को हमारे लिए सजीव बनाकर इन सत्यों को स्थायी व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर दें। यह समय आपके द्वारा पवित्र किया जाए, हम में सुनने के कान, आज्ञाकारी हृदय एवं एक एकाग्र चित्त उत्पन्न करें। इन सब में प्रभु महिमान्वित मात्र मसीह यीशु हूं। ये प्रार्थना हम उसी मसीह यीशु हमारे जीवित उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम प्रारंभ करेंगे पत्रस के द्वितीय अभिलेख के तृतीय अध्याय को। इसका मुख्य विषय है मसीह यीशु के प्रकट होने के विषय उपयुक्त मनोवृत्ति, मत भ्रष्टता की परख। संसार के लिए परमेश्वर का कार्यक्रम, अतीत का विश्व, वर्तमान विश्व तथा भावी विश्व तथा समस्त विश्वासियों के लिए निर्देश। इस अध्याय के तीन प्रमुख विभाग हैं। पहला है मसीह यीशु के प्रकट होने के प्रति पथ विमुख लोगों की मनोवृत्ति ही उनकी परख है। दूसरा, विश्व के लिए परमेश्वर का कार्यक्रम तथा तीसरा है विश्वासियों को निर्देश। पत्रस लिखित यह भी एक अमूल्य कृति है। पद एक में वह लिख रहे हैं, प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों को दूसरी बार पत्र लिख रहा हूं। इन पत्रों में मैं कुछ तथ्यों का स्मरण दिलाकर आप लोगों की सद्बुद्धि को सचेत करना चाहता हूं। यहां पत्रस ने स्पष्ट कर दिया कि वह ही इन दोनों पत्रों के लेखक हैं, इसलिए विवाद का कहीं कोई स्थान नहीं। यहां उन्होंने उपयोग किया है एक शब्द सद्बुद्धि। कुछ अनुवादों में इसे शुद्ध अथवा पवित्र बुद्धि कहा है, किंतु आप ही सोचिए, क्या किसी की बुद्धि को पवित्र बुद्धि कहा जा सकता है? यह असंभव है। एक उदाहरण, किसी ने कहा कि मैं एक मंदिर का निर्माण करूंगा। यह एक ऐसा कक्ष होगा जिसमें बैठने वाले व्यक्ति को भला ही भला, सुखद ही सुखद लगेगा और उसे उत्तम उत्कृष्ट विचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी। उसे अच्छा अच्छा अनुभव करने में प्रोत्साहन प्राप्त होगा और कुछ वहां से उत्तम मनस्थिति लेकर लौटेंगे। किसी ने कहा, चलो ट्राई कर लेते हैं। वो वहां जाकर बैठा और अपने मन को शांत कर कहा, चलो अब अच्छे अच्छे विचारों की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो। उस व्यक्ति ने पाया कि वहां बैठकर उसके मन में गंदे से गंदे विचारों ने धावा बोल दिया, सशक्त धावा बोल दिया। वहां क्या कोई भूल हुई थी? भूल कोई नहीं हुई थी। हां, वस्तु स्थिति यह है कि हमारे मस्तिष्क शुद्ध है ही नहीं। मूल यूनानी में पत्रस ने उपयोग किया है सच्चा मस्तिष्क। स्मरण रखिए कि पत्रस यहां मसीहों अर्थात विश्वासियों से उन्मुख हैं, अतः वो कह रहे हैं, मैं तुम्हारे मस्तिष्क उत्तेजित करने के द्वारा तुम्हारी स्मृति ताजा करना चाह रहा हूं। यह कोई नया विषय नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके स्मृति पटल पर पड़ी धूल उड़ा दी जाए। किसी धुरंधर ने कहा, बड़ी अच्छी है मेरी स्मृति, किंतु मेरी समस्या यह है कि मेरी विस्मृति अर्थात भूलने की दुर्बलता उससे भी अधिक प्रबल है। यह उसी की समस्या नहीं थी, हमारी भी है, अनेकों की है। शमौन पत्रस यहां इसी ओर संकेत कर रहे। जिस रात्रि उन्होंने मसीह यीशु से इनकार किया था, जब वो वहां आग ताप रहे थे और वो शत्रु शिविर में बैठे हुए थे, उनके स्मृति पटल से कुछ ही घंटों पूर्व की गई मसीह यीशु की पूर्व घोषणा साफ हो चुकी थी, इरेज हो गई थी। मसीह यीशु ने उनसे कहा था, सुनो, तुम तीन बार मेरा इनकार इसी रात्रि में करोगे। पवित्र लेखक ने स्पष्ट किया, प्रभु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा। पतरस की स्मृति पटल पर प्रभु के वे शब्द पुनः उभर आए। पतरस तो उन्हें विस्मृत कर चुके थे। यही हमारी भी दुर्बलता है, अतः वो हमारी स्मृति को ताजा करने का उपक्रम कर रहे हैं, हमारे सच्चे मस्तिष्क को उत्तेजित करने के द्वारा। तब पद दो में लिखते हैं, आप लोग पवित्र नबियों की नबुवतें तथा प्रभु एवं मुक्तिदाता की वो आज्ञा स्मरण रखें जो उनके प्रेरितों द्वारा आप तक लाई गई थी। पवित्र नबी पुराना नियम के नबी हैं, अर्थात वे नबी जो पुराना विधान काल में नबुवत करते थे, तथा प्रेरित, यहां पत्रस एक बार फिर स्वतः को अन्यों के ऊपर नहीं रख रहे, वह यह कह रहे हैं कि वह भी उन्हीं के समान उन्हीं के समकक्ष व्यक्ति हैं। पत्र को समाप्त करने के पूर्व वह उसी तथ्य का उल्लेख करेंगे जिसका उल्लेख पौलुस ने किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पौलुस को भी एक प्रेरित के रूप में स्वीकार कर लिया है। वह कह रहे हैं कि वह स्वयं वे तथ्य प्रकाशित कर रहे हैं जिनका उल्लेख अन्य प्रेरित पहले ही कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यही विषय पुराना विधान के नबियों द्वारा भी उठाए गए थे। अब यह विषय देखिए, पद तीन, पत्रस लिखते हैं, आप लोग सर्वप्रथम ये जान लें कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले निंदक आएंगे। वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। वो कह रहे हैं सर्वप्रथम जान लें, अर्थात यह अत्यंत आवश्यक है, अन्य सारे तथ्यों से अधिक महत्व का विषय है। अंतिम दिन अर्थात मसीह यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात का सारा काल अंतिम दिनों के वर्ग में रखा जाएगा और उसका संपूर्ण काल निश्चित है। ये अंतिम दिन समाप्त होंगे महाक्लेश काल के साथ। उस समय कलीसिया पृथ्वी पर नहीं रहेगी। हाँ, कुछ संगठित संसारिक चर्च अपना कार्य चलाते रहेंगे, किंतु विश्वव्यापी कलीसिया अर्थात विश्वासी गण, मसीह की देह अर्थात कलीसिया, उस समय अर्थात महाक्लेश काल के समय पृथ्वी पर नहीं होगी। निंदक कौन है? ये वे ही है जिनके विषय हम अध्याय दो में भी विचार कर चुके हैं। ये निंदक कलीसिया के सदस्य ही होंगे। इनमें से अनेक होंगे प्रिय एवं लोकप्रिय पास्टर्स, जो कि अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में जुटे होंगे। उन्हें परमेश्वर के वचन पालन में ना कोई रुचि होगी और ना उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति कोई श्रद्धा अथवा भय। यही होते हैं वे लोग जो बाइबल के सत्य पर कठोर आघात किया करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों के परित्याग के लिए तत्पर है, मसीह यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करने का इच्छुक है, तब परमेश्वर आपके लिए अपना वचन सजीव बना देंगे। पौलुस प्रेरित अविश्वासियों के मस्तिष्क पर पड़े आवरण का उल्लेख करते हैं, किंतु जैसे ही कोई अविश्वासी परमेश्वर की ओर लौटता है, उनकी ओर आने के लिए उद्यत होता है, वो आवरण पौलुस की आंखों पर पड़े कड़े आवरण के जैसे अपने आप गिर जाता है। अविश्वासियों की समस्या बौद्धिक नहीं हुआ करती, उनकी समस्या सीधे हृदय से संबंधित है। यदि वे अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए इस तर्क का आश्रय लेते हैं, तब यह पूर्णतः झूठ है, पूरा झूठ। पद 4 में पत्रस कह रहे हैं, वे कहेंगे, प्रभु के आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो चल बसे, किंतु सृष्टि के आरंभ से अब तक सब कुछ वैसा का वैसा है। दूसरे शब्दों में, वे आज के उस प्रसिद्ध कल्ट ग्रुप के शब्दों में कहेंगे, अरे तुम लोग बड़ा कोलाहल मचाते हो, रैप्चर होगा, रैप्चर होगा। यह सुनते सुनते पीढ़ी पर पीढ़ी निकल गई है, अरे जागो, कुछ ठीक से समझो। अरे बाबा, रैप्चर तो कब का हो चुका और तुम लोग यहीं की यहीं हो। और वे हमारी परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं। वे मसीह यीशु के प्रकट होने तथा महिमा में आने के दोनों तथ्यों से इनकार करेंगे। हम तो सोचते रहे थे कि केवल अनीश्वरवादी एवं साम्यवादी मसीह यीशु से इनकार करते हैं, यहां तो ये मसीही कहलाने वाले ही इस तथ्य से विमुख हो गए हैं। कुछ तथ्य पुराना विधान के नबियों के विषय, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि मसीह यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएंगे। नया विधान के प्रेरित क्या लिखते थे? उन्होंने मसीह यीशु के प्रकट होकर कलीसिया को पृथ्वी से उठा लेने के विषय लिखा है, और तब घटनाक्रम में होगा 7 वर्षीय क्लेश काल और महाक्लेश काल, और तब मसीह यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर शासन करने लगेंगे। यहां ध्यान दीजिए, पुराना विधान के नबियों ने कलीसिया का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, एक ने भी नहीं। वे केवल मसीह के पृथ्वी पर आकर राज्य की स्थापना की नबुवत करते रहे। ये केवल मसीह यीशु ही थे जिन्होंने ये प्रकट किया था कि वो अपनों को लेने आएंगे, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं, और जब मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं, मैं लौट कर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो किसी पृथ्वी पर आरक्षित स्थान नहीं जा रहे थे, वो जैतून पर्वत की दूसरी ओर स्थान तैयार करने नहीं जा रहे थे। जाकर देख लीजिए, वहां कुछ भी नहीं है, वो एक बीहड़ निर्जन स्थान है। हमारे प्रभु स्वर्ग लौट गए और वो वहीं हमारे लिए स्थान तैयार कर रहे हैं, और लौटकर आने की उनकी प्रतिज्ञा भी अब तक अटल और निश्चित है। पौलुस प्रेरित ने सूचना दी है कि हम उनसे वायु में मेल करेंगे। अब इसे फिर सुनिए, पुराना विधान में नबुवत थी कि मसीह यीशु लौटकर आएंगे और पृथ्वी पर अपने द्वारा शासित एक राज्य की स्थापना करेंगे। नया विधान की नबुवत है उनका बादलों में प्रकट होकर अपनी कलीसिया को पृथ्वी से उठा ले जाने का, तत्पश्चात पुनः लौटकर आकर यहां पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने का। निंदक अपने पूर्वजों के समय तक पहुंचकर उपहास करते हैं कि प्रभु की प्रतिज्ञा का क्या हुआ, वो तो आए ही नहीं। इसलिए भी कहते हैं, हम जैसे पहले थे वैसे ही ठीक हैं, ये सब बकवास है, संसार चल रहा है, चलता ही रहेगा, इन बातों को गंभीरता पूर्वक लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे कोई तुक नहीं बनता। पत्रस कहते हैं, तुम भूल यही कर रहे हो। यदि तुम यह समझते हो कि पहले कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होने वाला, तो जरा ध्यान से सुनना। अब यहां पत्रस विश्व के विषय परमेश्वर के कार्यक्रम का उल्लेख करेंगे, 3 विश्वों का। यह हमारे लिए आश्चर्य का विषय नहीं होगा, आजकल 2-in-1, 3-in-1 इत्यादि अत्यंत सामान्य विषय है। हम भी एक विश्व में निवास कर रहे हैं जो कि 3-in-1 विश्व है। हम एक विश्व की भी चर्चा सुनते हैं, हाँ यह भी सही है, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत एक निरंकुश शासक होगा जो संपूर्ण विश्व को अधिकार में कर लेगा, अर्थात एंटी क्राइस्ट। विश्वासी और तार्किक दार्शनिक इस तथ्य से सहमत हैं। महान विचारकों ने भी यही निष्कर्ष निकाला है। आइए देखें अतीत का विश्व क्या है। पत्रस यहां 3-in-1 प्रयुक्त कर रहे हैं। देखें यह प्रथम विश्व क्या है, पद 5 और 6 पत्रस ने लिखा। वे जानबूझकर यह भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में एक आकाश था तथा एक पृथ्वी जो परमेश्वर के शब्द द्वारा जल से उत्पन्न होकर जल पर बनी हुई थी। उस समय का संसार जल में ही नष्ट हो गया क्योंकि प्रलय ने उसे जलमग्न कर दिया। उन्होंने जानबूझकर इस तथ्य को विस्मृत करना उपयुक्त समझा। अनेक वैज्ञानिक इससे उलझन में पड़ गए। उस समय का मानव जगत तथा प्राणी जगत मिटा दिया गया था। यह संभवतः उस समय का उल्लेख है जब आदम के पूर्व एक सृष्टि थी, अथवा यह उल्लेख नूह के समय के प्रलय का भी हो सकता है। संभवतः नूह के समय का प्रलय ही उपयुक्त है। प्रथम विचार के विषय यह कहा जा सकता है कि ऐसा ज्ञात होता है कि उत्पत्ति प्रथम अध्याय प्रथम पद तथा द्वितीय पद के मध्य एक कड़ी थी जो छिपा दी गई है। प्रथम और द्वितीय पद के मध्य एक व्यापक सशक्त प्रलय हुआ था। अनेक प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं। आदम के पूर्व भी सृष्टि में एक दंड का उपयोग किया गया था। इस विषय का संकेत हमको यशाया 14:12-14 में प्राप्त होता है, जहां यशाया ने ऐसा लिखा। ओ भोर के चमकते तारे, ओ उषा पुत्र, तू आकाश से नीचे कैसे गिर गया? अरे तूने तो राष्ट्रों को धूलि धूसरित किया था, अब तू कैसे स्वयं भूमि की धूल चाट रहा है? तूने अपने हृदय में सोचा था मैं आकाश पर चढ़ूंगा, परमेश्वर के तारों के ऊपर ऊंचे से ऊंचे स्थान पर मैं अपना सिंहासन प्रतिष्ठित करूंगा, मैं दूरस्थ उत्तर में स्थित देवताओं की पर्वत माला पर विराजूंगा, मैं बादलों के ऊपर उच्चतम स्थान पर बैठूंगा, मैं स्वयं को सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनाऊंगा। 5 बार मैं। शैतान की अभिलाषा परमेश्वर से भिन्न होने की कभी न थी। वह तो परमेश्वर का स्थान लेना चाह रहा था। आज अनेक मानव भी तो यही चेष्टा कर रहे हैं। कुछ है जो स्वयं अपना उद्धार बनाने के प्रयास में है। उनका तर्क है स्वर्ग प्रवेश के लिए उपयुक्त भलाई मुझ में है। तब वे ये भूल जाते हैं कि वे एक महापवित्र परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। वे ये मानना ही नहीं चाहते कि मानव पाप में है, कि मानव स्वभाव ही से विनाश उन्मुख है, तथा उन्हें इस स्थिति से बचने के उद्देश्य से परमेश्वर ने एक उद्धार मार्ग तैयार किया है। मसीह ने कहा था, कोई भी मेरे सिवा किसी अन्य साधन से पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ये किसने कहा है? ये किसके शब्द है? किसी मानव के नहीं, वरन एक परमेश्वर मानव के। अब यदि आपने ये निश्चय कर लिया है कि आप अपने ही प्रयासों से पिता के पास जा सकते हैं, तो आप ये सब कह रहे हैं, हटिए परमेश्वर जी, मैं आपके स्थान पर आपके साथ बैठना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक ईश्वर ही हूं। ठीक यही थी शैतान की अभिलाषा। बस यही थी वह चिंगारी जिसने स्वर्ग में ऐसा भयंकर विस्फोट कर दिया कि शैतान और उसकी समस्त समर्थक दूत सेना स्वर्ग से निष्कासित कर दी गई। शैतान लूसीफर, प्रभात का तारा। और तब पत्रस के लेख से ज्ञात होती दूसरी संभावना है लू के समय के जल प्रलय की। अधिकतर बाइबल शिक्षक इसी के समर्थक हैं। यह सुझाव यहाँ उपयुक्त लगता है। नूह के समय के समस्त प्राणी उस व्यापक विश्वव्यापी बाढ़ से नष्ट किए गए। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। कल्दियों के ऊर के स्थान की नहर से यह स्पष्ट होता है कि अनेक नष्ट सभ्यताएं वहां विद्यमान थीं। पुरातत्व खुदाई भी इसके समर्थन में अनेक प्रमाण प्रस्तुत करती है। वहां बाढ़ के समय की बालू प्राप्त होती है, जबकि वो मरुस्थल है। हमारे विचार से पत्रस यहां नूह के समय के प्रलय के विषय ही उल्लेख कर रहे हैं, और हमको कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें पूर्ण सत्य विद्यमान है। भला भूमि के समुद्र तट से दूर के स्थानों में भी जलीय वस्तुओं का होना क्या प्रमाणित करता है? वैसे भी एक वर्ष तक पृथ्वी का जलमग्न रहना अपने चिन्ह छोड़े बिना नहीं जा सकता। आप किसी भी विचार को थामें, इससे पत्रस के लेख में कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हो सकता। कहीं भी ऐसी अस्पष्टता हमारे विचारों में आंदोलन एवं उद्वेलन के लिए स्वास्थ्य कर ही हुआ करती है ना? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसा हुआ अवश्य। एक महाप्रलय हुआ था और पृथ्वी के जनजीवन में एक अवरोध आ गया, कुछ हुआ अवश्य था। तो यह था अतीत का विश्व। अगला विश्व है वर्तमान विश्व, जिसमें हम निवास कर रहे हैं। पद 7 में पत्रस लिख रहे हैं, परमेश्वर के शब्द ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है, उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है, उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। प्रभु परमेश्वर इस वचन और इस संदेश के माध्यम से आपके हृदय के विचारों की सुरक्षा करते रहे।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।